नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी से मैं योगेश और हमारा आज का विषय है केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं, इसे बनाए रखने में समझदारी से वोट करें। मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों में 12 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। कोई भी जागरूक नागरिक यह जानता है कि लोकतंत्र में वोट की क्या कीमत होती है। वोट का अधिकार ही वह बुनियादी अधिकार है जो लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी और हमारे नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल में स्वागत है आपका।
जी, सर नमस्कार। और एक बहुत ही संवेदनशील विषय, क्योंकि मतदान का महत्व लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये विषय पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे मंच प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर,
जी
बोलिए।
सर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या सर केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं, इसे बचाए रखने में मतदाताओं की भागीदारी को किस तरीके से देखते सर?
देखिए साहब, अब्राहम लिंकन साहब ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी कि लोगों के लिए लोगों का शासन, ये जो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन था अब्राहम लिंकन का, वो आज के संदर्भ में प्रासंगिक तो है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब एक तरह का लोकतंत्र का जो स्वरूप बदल रहा है, यहाँ भीड़ तंत्र आ रहा है, उसमें विवेक शून्यता की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि जो भारत है 6,45,000 गांवों में बसा है, और 6,45,000 में करीबन 73% मतलब 73% आबादी बसती है, और 20% मतलब 27-28% शहरों में बसती है। तो एक बड़ा जो वर्ग है, मतदाता वर्ग जो है, वो गांव में है। और आज भी हमारे भारत देश में 100% साक्षरता नहीं है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जिस दिन 100% साक्षरता भारत में होगी, तो तभी सही मायने में लोकतंत्र का निर्माण होगा। लोकतंत्र यद्यपि अभी है, लेकिन आज भी कई लोग अपने उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मतदान का हमको अधिकार दिया गया है, उसका महत्व नहीं समझते। आज भी अभी मैं सांसद तहसील के आस पास के गांव में देखता हूँ कि हमारा जो स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व है, वो किस तरीके से, हालांकि आचार संहिता लगने के बाद शराब ये वो सब चीजों पे प्रतिबंध हो जाए, मतलब एक व्यवस्थित स्वरूप में संचालन होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चुनाव के पहले किस तरीके से लोगों को मतलब प्रभावित किया जा रहा है, युवाओं को शराब के माध्यम से, लोगों को पैसे के माध्यम से। तो बड़ा ये हालांकि ये निर्वाचन आयोग को सूचित करने की बहुत बड़ी व्यवस्था भी है, लेकिन कुछ लोग मतलब इस लालच में आके अपना वोट डालते हैं, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, और हमको निर्भीक और निडर होकर मतदान करना चाहिए। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जिस तरह से राजनीतिक तंत्र में उभर कर आ रही है कि उन्होंने मतदाताओं को 500 रुपये और एक शराब की बोतल में खरीदने का जो एक बीड़ा उठा लिया है, कि उनको लगता है कि हम तो पैसे से जीत जाएंगे, ये शायद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इस तरह से गतिविधियों में शामिल होके हम अपने लिए नुकसान करते हैं। हमको व्यवस्था को समझना होगा। जी
जी सर, सर चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों ही लोक लुभाने वादे कर रहे हैं सर। जनता किस तरीके से इन लोक लुभाने वादों को समझकर मतदान करने के लिए पहुंचे?
नहीं, देखिए, एक मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान हमको एक सोशियोलॉजी में टॉपिक था, इलेक्शन बिहेवियर, मतदान व्यवहार। मतलब मतदाता जब अपनी बूथ पे जाता है, तो उसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, और बहुत सारी चीजें प्रभावित होने के पश्चात वो अंतिम समय में अपना निर्णायक मत देता है कि किसको देना है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से व्यवस्था निर्मित हो रही है, तो उस स्थिति में ये आवश्यक हो जाता है कि हम जैसे अपनी बेटी के लिए जब एक पिता एक वर का चुनाव करता है, तो हर चीज देखता है, तो क्या हम अपने देश के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको भी उस आधार पे परखा जाए? हमको पार्टी से लेना देना नहीं है, महत्वपूर्ण ये होता है कि हम योग्य सक्षम व्यक्तियों को चुने। आज देखिए जिस तरह से जनप्रतिनिधि राजनीतिक संगठनों के माध्यम से खड़े किए जा रहे हैं, उनका आपराधिक रिकॉर्ड देखिए। हाँ, ये अलग बात है कि आरोप है, पर उनका कहना है कि भाई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। उनको देखिए, अभी संसद में 144 लोग अपराधी है, मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 जो विधायक है उनकी स्थिति यह है कि उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब MLA का फुल फॉर्म नहीं पता है, और 10-10 साल से विधायक हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसे असक्षम लोग यदि हमारी विधानसभा में विधानमंडल में जा रहे हैं तो क्या सही मायने में ये नेतृत्व तो कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग केवल अपने व्यक्तिगत हितों की साधना के लिए वहां जाते हैं। और मैंने तो अभी पिछली बार एक मसला भी उठाया था कि ऐसा कौन सा काम करते हैं हमारा राजनीतिक नेतृत्व की जिनके पास शुरुआत में कुछ भी पैसे नहीं रहते और फिर इनके अरबों खरबों की संपत्ति हो जाती, ऐसा कौन सा काम करते? यदि इनके पास ऐसा कोई रोजगार का संपन्न साधन है तो वो बेरोजगार जो युवा वर्ग है उनको बताना चाहिए ताकि वो भी सक्षम बन सके। तो ये जो लोकतंत्र में एक अलग तरह का जो भीड़ तंत्र, एक माफिया तंत्र जो निर्मित हो रहा है, ये आने वाले लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ये बात मतदाता को समझना चाहिए। यदि मतदाता जागरूक होगा, शिक्षित होगा, निर्णय की स्थिति में हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात तो मतदाताओं को लोक लुभावन स्थिति में नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए, आपको यदि वो लोक लुभावन बातों के माध्यम से प्रभावित करे, आप देखिए पंजाब की स्थिति क्या हो गया। एक समृद्ध राज्य ये लोक लुभावन व्यवस्था के माध्यम से इतनी गरीब स्थिति में आ गया कि बहुत ज्यादा। अभी मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे 40 से 44 हजार रुपये कर्जा लेके एक बच्चा पैदा हो रहा है, ये समझ लीजिए इतना कर्जा है। हमारी आय 1,40,000 मात्र है। हम लोग गरीबी राज्य से तो निकले लेकिन हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतना कर्जा हो गया कि आने वाले समय में यदि मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होता भी है तो जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो कर्जे के साथ सत्ता का संचालन करेगी, उसका प्रभाव हमको। ये जो लोक लुभावन व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं दी जाती है, इसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, जनमानस भी कह रहा है कि इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को फुकट में खाने की आदत हो जाएगी। हाँ, जरूरतमंद है तो उसको दो, लेकिन आप बिजली फ्री में दे रहे तो साहब आप सोचिए उसका संभाला संचालन कैसे होगा। फिर आप उनको सिलेंडर दे रहे हैं आप, अरे शिक्षा पे बात कोई करता ही नहीं। शिक्षा को व्यवस्थित करिए, सबसे जरूरी शिक्षा बहुत जरूरी है। लोक लुभावन व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर लोकतंत्र का निर्माण नहीं होना चाहिए और ये बहुत गलत है। इससे आम आदमी के ऊपर ही इसका बोझा आता है। अभी ये इनका एजेंडा जो आ रहा है पार्टियों का, उनको पढ़ो तो ऐसा लगता है कि ये सारी सुविधा दे रहे तो इनके लिए आर्थिक उपार्जन कहाँ से होगा? उसका तो उपार्जन फिर अंत में तो भार तो जनता के ऊपर ही आना है, कर्जा बढ़ना ही है, फिर व्यवस्था को संचालन करने के लिए कर्जा लेंगे तो फिर उससे जनमानस प्रभावित होता है और फिर हर चीज महंगाई बढ़ती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है, बहुत सारी चीजें निर्मित होती है। जी
सर, क्या देखते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने हेतु क्या क्या कदम देखते हैं सर?
देखिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमारा जो मतदाता है वो अपने वोट की कीमत को समझे। आज भी भारत का एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो ग्रामीण क्षेत्र में, उनको सिर्फ इतना पता है कि हमको वोट डालना है बस, और उनको कोई साड़ी देता है, कोई पैसा देता है, कोई शराब की बोतल देता है, उनके चक्कर में आके वो मतदान करते हैं। आप दिल्ली की बात देखिए, बड़े पहड़े मतलब जो शिक्षित वर्ग है वहां देखिए चुनाव किस हिसाब से होते, बढ़िया व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। अभी अपने छिंदवाड़ा की बात करूं, यहाँ 2000 गांव है, 2000 गांव की व्यवस्था को देखिए, आप जाके देखिए कैसी स्थिति है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई नेता हमारे पास आ रहा है, सुविधाएं दे रहा है, उनको ये नहीं पता। अभी देखिए, चाहे विधानसभा हो चाहे संसदीय क्षेत्र हो, तो जो फंडिंग आती है उनके लिए 5 साल के लिए, उसके माध्यम से हमारे क्षेत्र में कई विकास की बातें होती है, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है उसको लगता है कि हमारे नेता हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो कहाँ से कर रहे हैं? वो तो आपको 500 रुपए दे रहे, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो तो 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपको 500 दे के, लेकिन आप देखिए बाद में क्या स्थिति बनती है, वो करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। अभी देखिए, एक नेता का मैंने पढ़ा था कि जब उनका निधन हुआ तो 2000 करोड़ के मालिक थे, इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आती? तो इसके लिए सबसे पहले हमारे मतदाता को समझना होगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो हमारे हितों की बात करे, हमारे बीच का हो, हमारे जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने वाला हो, शिक्षा को महत्व देने वाला हो। एक दूसरा, जो भी मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधि को चुनाव करता है उसका जो छवि है, उसकी जो छवि है वो चारित्रिक न हो, आपराधिक प्रवृत्ति का न हो। अभी देखिए ज्यादातर देखने में आ रहा है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव में खड़े हो रहे, और जो अच्छा योग्य उम्मीदवार है उनको लोग वोट नहीं देते क्योंकि वो खर्च नहीं कर सकता। तो ये चीज, दूसरा चीज जो इनके द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है मतदाताओं के बीच में, मतलब 500 रुपया शराब की बोतल, ये सामान वो सामान, शराब तो इतना बढ़ती है साहब कि निर्वाचन आयोग को भी रिपोर्ट भेजे तो कौन से भेजे, समझ में नहीं आता है ना। हालांकि प्रशासन बहुत अच्छे से व्यवस्था संचालित कर रहा है, अभी जो आचार संहिता लागू होने के बाद हमारे कलेक्टर महोदय बहुत अच्छा कर रहे हैं, एसपी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा है, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो मतलब नेताओं के जो प्रतिनिधि होते हैं वो किस तरह से रात्रि के अंधेरे में ये सब काम करते हैं, और इस पे कंट्रोल होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात एक और कहना चाहूंगा कि शिक्षा के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हमको पहले शिक्षा पे अधिक बल देना पड़ेगा। यदि लोकतंत्र को यदि अच्छा मजबूत करना है तो ही हो सकता है, और वो सब शिक्षा के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना पड़ेगा, उसके उसके महत्व को समझाना पड़ेगा, और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति की घटनाएं घटती है आसपास उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है प्रशासन में। हालांकि प्रशासन करता है लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पे ऐसा नहीं हो पाता, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जी
सर, क्या सर लोकतंत्र में धार्मिकता और ध्रुवीकरण को राजनीति को किस तरीके से समझे सर एक मतदाता?
देखिए कार्ल मार्क्स से, जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने कहा था कि धर्म जो अफीम है, और इस अफीम का नशा हमारे मतदाताओं के बीच में किस तरीके से डाला जाता है ये हमने अपने जिले में देखा। आप देखिए हजारों करोड़ों रुपया इस तरह के आयोजन में हो रहे। अभी मैं संसद में थोड़ी देर पहले गया था तो मैं देखा वहां गरबा का आयोजन हो रहा है, जगह जगह पे गरबा हो रहा है। बताइए वो जो भाग लेने वाले युवा है उनके पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। आज देखिए वहां भी एक कार्यक्रम है, कौन बनेगा करोड़पति, स्थानीय स्तर पे एक संस्थान आयोजित कर रहा है, वहां 100 बच्चों का एडमिशन नहीं है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि युवा भी अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पा रहा, उसको कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश होती है अपने हितों के लिए, और वही हिता फिर वही युवा बाद में हथियार लेता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश में सबसे बड़ी जरूरत है युवाओं को अपने स्वस्वार्थ, अपने हित की बात सोचने की। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि आजकल राजनीतिक नेतृत्व तो ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, वो विकास की बात कम करते हैं, वैसा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ताकि पब्लिक प्रभावित हो। लेकिन मुझे एक बात भी कहने में बहुत संकोच नहीं होगा कि हमारा मतदाता अब बहुत समझदार हो गया, अब वो विकास देखता, बुनियादी स्तर पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है कि मेरे यहाँ सड़क है कि नहीं, पानी है कि नहीं। अभी देखिए हमारे छिंदवाड़ा जिले की और संसद तहसील के कई ऐसे गांव है जहाँ के कई लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अभी मैं सावंगा गया था पिछली बार, वहाँ सड़क है गड्ढे में सड़क है कि गड्ढे सड़कों में गड्ढे, ये नहीं, बेड़ी की स्थिति देखिए। हम लोग किस बात के विकास की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया इधर उधर खर्च कर रहे हैं इसके उसके आयोजन में, लेकिन वहां से जो बच्ची आती है कई बार गिर चुकी है, उनकी साइकिल से आते हैं वो लोग। गाँव में देखिए सड़कों की स्थिति है ना, चोरियां बढ़ गई है, कानून व्यवस्था पे नियंत्रण इस पे किसी का ध्यान नहीं है, शिक्षा पे किसी का ध्यान नहीं है, फिर किस बात का विकास की बात करते हैं आप लोग? जी
सर, प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में 22,36,000 से अधिक युवा मतदाता जो कि 18 से 19 वर्ष के हैं, जो आज पहली बार इस विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले हैं, सर इन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि जो भी स्थानीय प्रतिनिधि आपके घर आता है आपको वोट मांगने के लिए या वोट की बात करता है तो उसका एजेंडा पढ़िए आप सबसे पहले, उसके एजेंडे में क्या लिखा है, क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने यदि ध्यान बातें रखी है, क्योंकि हम लोग उसका एजेंडा पढ़ती नहीं, बच्चों की तो छोड़ो हम लोग भी कई बार नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि उनका एजेंडा पढ़ना जरूरी है, उनसे सवाल करना चाहिए कि पिछले अगले 5 साल में आपके विकास का मॉडल क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आपका मॉडल क्या है, रोजगार के क्षेत्र में आपका मॉडल क्या है, ये सवाल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 22 लाख जो मतदाता है इनको सवाल करना चाहिए। अभी देखिए 2017 के बाद कभी वैकेंसी नहीं आई थी और एकदम इतनी वैकेंसी की भरमार कर दी कि बच्चा खुद कौन सी परीक्षा दे उसको ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा तरीका है। मतलब एक तरह का माफ मतलब निरंकुशता की स्थिति बन गई। शासन भाई जनता के द्वारा निर्मित है ना, सरकार हम तय करते, जनता मालक है इस संवैधानिक व्यवस्था में। ये आईपीसी की धारा 21 के तहत जितने को भी पेमेंट मिलता नहीं, लोक सेवक है, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे मंत्री हो, ये सब लोक सेवक है। जनता हम है, मतदाता मालिक है, पर उस मालक को अपने वोट का महत्व नहीं पता। तो इसलिए मैंने कहा ना कि एक बेटी के लिए जिस तरीके से दूल्हा ढूंढ के बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ढूंढते, वैसे ही आपको मतदान करते समय अपने मतदाता मतलब अपना जो प्रतिनिधि होगा उसका पूरा कुंडली आपको पता होना चाहिए, उसका एजेंडा पता होना चाहिए, और उस एजेंडे के ऊपर उसके अगले 5 साल के लिए क्या मॉडल तैयार है, ये सवाल होना चाहिए। हम लोग सवाल नहीं करते साहब। जी जी,
तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने केवल वोट देना लोकतंत्र नहीं, इसको बनाए रखने में समझदारी से वोट करें, इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वन के साथ साझा की। सर मोबाइल वन को समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी सर, धन्यवाद सर, नमस्कार।
मोबाइल वन सब पर हो, धन्यवाद।